अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री नमाचार्य विलास ठाकुर की जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय श्री श्री गौर निताय की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की सब वेद भक्त वृंद की निताई गौर हरिमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के इस मंदिर के प्रांगण में इस रविवार के प्रीति भोज सत्संग में उपस्थित हुए सभी भक्तों का स्वागत है। श्री प्रभुपाद महाराज के सानिध्य में श्री श्री राधा गिरधारी जी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमल का आश्रय लेकर वैष्णव समूह में बैठकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना, इससे बढ़कर मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं हो सकता। जैसा कि हम श्रवण कर रहे हैं सप्तम स्कंद में, वर्तमान समय में क्रमानुसार आदर्श पारिवारिक जीवन ग्रस्तों के लिए जहां उपदेश दिया जा रहा है, महाराज युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किया था नारद जी से, मादृश ग्रह मूढ़ भी मेरे जैसा मूड बुद्धि व्यक्ति भी कैसे उच्च उस उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, तो इसके विषय में सर्वप्रथम नारद जी ने बताया था उपासित महामुनि, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए गृहस्थों के लिए। अगर हमारे गृहस्थ जीवन को आदर्श जीवन बनाना है, आदर्श परिवार बनाना है, तो सर्वप्रथम नारद जी उपाय बताते हैं उपासित महामुनि, भगवान के भक्तों का संग कर। मुनि उपाय जी लिखते हैं, मुनि जो आध्यात्मिक विषय में मननशील होता है उसको मुनि कहते हैं। तो मुनि भी दो प्रकार के होते हैं, एक मुनि, एक यहां कहते हैं महामुनि। मुनि को कहीं कहीं जो मौन हो जाता है तो उसको मुनि कहते हैं, मौन होकर मनन करता है मुनि, उसको मुनि कहते हैं। और महामुनि तो वो मौन नहीं होता बल्कि मात्र कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन तो करता रहता है, वो महामुनि। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। बोल तो महामुनि मतलब जो भगवान का कथा कीर्तन करते रहते हैं वे महामुनि अर्थात वैष्णव, उनका संग प्राप्त करना ये बहुत ही आवश्यक उपदेश नारद जी ने दिया। तो इसी क्रमानुसार आगे क्या नारद जी बताते हैं, बताते हुए आज का श्लोक आया है, सबको ध्यान रखना चाहिए। ये स्थान है राजसूय यज्ञ, जिसके वक्ता हैं नारद मुनि और श्रोता हैं महाराज युधिष्ठिर। और प्रश्न क्या है, जिज्ञासा क्या है गृहस्थियों के विषय में, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि युधिष्ठिर महाराज जो भागवत पुरुष हैं वो कोई आसक्त नहीं है घर में या मूड नहीं है, लेकिन फिर भी दैन्यवश से पूछते माँ दृश्य ग्रह मूड भी, मेरे जैसा घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति भी किस प्रकार परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं माँ दृश्य ग्रह, एक तो उनका दैन्य भाव है इसमें और दूसरा वे नरपति हैं, साधारण जो जनता है उनके वो राजा हैं प्रतिनिधि हैं। तो वे हमारा साधारण प्रजा का प्रतिनिधि बनकर प्रश्न कर रहे हैं। वैष्णव जो होते हैं वो खाली अपना भलाई नहीं सोचते हैं, संसार के जीव मात्र का भला कैसे होगा उस उद्देश्य को लेकर वे जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता में अर्जुन का जिज्ञासा हो या श्रीमद् भागवतम में महाराज दीक्षित का जिज्ञासा हो, वो वास्तव में सभी संसार के जीवों का कैसे मंगल होगा उनको लेकर वे जिज्ञासा करते हैं। जैसे महाराज दीक्षित भी जब सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा किए तो जो मरणासन व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि महाराज परीक्षित मरणासन है, 7 दिन बाद उनको श्राप मिला हुआ है, लेकिन मरणासन तो सब जिसने जन्म लिया वे सब मरणासन है, सबका मृत्यु होने वाला है। और इन 7 दिनों में ही 7 जो वार बताए जाते हैं, रवि सोम मंगल बुध, इसमें से किसी न किसी वार को किसी न किसी दिन को मृत्यु होना है। तो कहने का अर्थ है वे सभी के हित के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये वैष्णवों का स्वभाव और दैन्यता है। तो इसी प्रकार हम सभी के हित के लिए विशेषकर ग्रस्तों के लिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का जिज्ञासा है और नारद मुनि उनका समाधान कर रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। इसी उपाय के अंतर्गत आज यहाँ पर 14वां श्लोक तक आए हैं। इस श्लोक में आए हुए शब्दों को पहले उच्चारण करेंगे। सिद्धये यज्ञ अवशिष्ट सार्थे कल्पयेत् व्रते आत्मना शेषे स्वत्वं त्यज्यन् प्राज्ञ पदवी महताम् इयात् सिद्धये यज्ञविशिष्टार्थे कल्पयेद् व्रतम् आत्मना कल्पयेद् व्रति आत्मना शेषे स्वत्वं त्यज्यन् प्राज्ञ पदवीं महतां यात् सिद्धये यज्ञावशिष्टार्थे कल्पयेद् व्रतिम् आत्मना शेषे स्वत्वं तज्जन् प्राज्ञ पदवीं महतां यात् सिद्धयेर्यज्ञवशिष्टार्थे कल्पयेद् व्रतिमात्मना शेषे स्वतं तज्जन् प्राज्ञ पदवीं महतां यात्
सिद्धे यज्ञावशिष्टार्थे
माता जी इस श्लोक में आए हुए शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, सिद्धये भगवान की दया से प्राप्त वस्तु है, यज्ञ अवशिष्ट अर्थे पंच महायज्ञ संपन्न करने के बाद या भगवान को यज्ञ अर्पित करने के बाद प्राप्त वस्तु है। पंच महायज्ञ संपन्न करने के बाद या भगवान को यज्ञ अर्पित करने के बाद प्राप्त वस्तु, कल्पये विचार करें, व्रते जीविका का साधन, आत्मना अपने लिए, शेषे अंत में, स्वत्वम अपनी पत्नी बच्चों घर व्यापार आदि का तथा कथित स्वामित्व, तज्ञान त्यागते हुए, प्राज्ञ बुद्धिमान लोग, पदवी पद, महताम आध्यात्मिक चेतना में पूर्णतया संतुष्ट महापुरुषों का, याद प्राप्त करना चाहिए। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद महाराज। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या पांच प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। ऐसे कार्यों से मनुष्य शरीर तथा शरीर के तथा कथित स्वामित्व के प्रति अपनी अनुरक्ति को त्याग सकता है। जब वह ऐसा करने में समर्थ होता है तो वह महात्मा के पद पर दृढ़ स्थित हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज समझा रहे हैं, प्रकृति ने पहले से हमें भोजन देने की व्यवस्था कर रखी है। भगवान के आदेश से 84 लाख योनियों में प्रत्येक जीव के लिए खाने पीने की वस्तुओं की व्यवस्था है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है और भगवान ने पहले से उसकी जीवन की आवश्यकता के लिए व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने हाथी और चींटी दोनों के लिए भोजन बनाया है। सारे जीव भगवान के भरोसे जीवित हैं, अतएव बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उसे कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति बचानी चाहिए। आकाश वायु स्थल तथा समुद्र में उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं भगवान की हैं और हर जीव को भोजन मिलता है, अतएव मनुष्य को आर्थिक विकास के विषय में अधिक उत्सुक नहीं रहना चाहिए और न जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने के लिए व्यर्थ ही समय तथा शक्ति का अपव्यय करना चाहिए। ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोमीशं स्थापितं येन भूतले क्षयं रूपपदामयं ददाति सौपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवां च श्रीरूपां साक्षिदातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनवसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा ग्रस्त उपस्थित हैं और उनके लिए बहुत सुंदर उपदेश एक प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिया जा रहा है। संसार में एक बात बहुत प्रचलित है, लोग प्राय बोला करते हैं, सादा जीवन ऊंचा विचार, ऐसा बोलते हैं। वो बोलने वाले का जीवन कैसा है, विचार कैसा है, उसका कैसे पता चले कि सादा जीवन किसको कहते हैं और ऊंचा विचार किसको कहते हैं। तो बोलने में बड़ा आसान है, कोई भी बोलता है। एक बार हम भावनगर गए थे प्रचार के लिए, तो वहां रेलवे स्टेशन पर चर्चा हो रहा था, तो एक भक्त भी साथ में थे, उसने ये शब्द बोला, सादा जीवन ऊंचा विचार। पहले ये चर्चा हुई, बाद में नया फ्लैट खरीदा था उसका चर्चा होने लगा। तो जो व्यक्ति बोले थे सादा जीवन ऊंचा विचार, उसको वो व्यक्ति पूछा कि आपने जो नया फ्लैट खरीदा था, बोला हाँ अब वो फ्लैट मिल गया है और उसमें मैंने 30 लाख का फर्नीचर भी करा दिया है। मैं उसको बोला 30 लाख मत बोलो, अभी अभी तो सादा जीवन बोला रहे। मुझे हंसी आई। तो लोग ऐसा बोला करते हैं, सादा जीवन ऊंचा विचार, लेकिन सादा जीवन क्या है और ऊंचा विचार क्या है, ये इस अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से नारद जी ने बताया है। कि सादा जीवन किसको कहते हैं, दोनों बातें बताइए, सादा जीवन किसको कहते हैं और ऊंचा विचार क्या है, ये दोनों बातों का चर्चा इस पर यहां होता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया था, जैसा हम सुन रहे हैं महाराज युधिष्ठिर का दैन्य भाव, तो उनके प्रश्न ने, उनका प्रश्न था ग्रस्त एताम पदवी, ये पहला श्लोक भी हमने लिया था और 14वां श्लोक भी आज, तो उनका प्रश्न था ग्रस्त एताम पदवी विदिना येन चांजसा ये याद देव ऋषि ब्रूही मादृशो ग्रह मूर्ति। हमारे जैसा भी घर गृहस्थी में फंसा हुआ बुद्धिहीन व्यक्ति उस परम पद को कैसे प्राप्त कर सकता है, कौन से परम पद, जो इस अध्याय के पहले वर्णन हुआ था, सिद्ध पुरुष का या सन्यासी का और ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों का जो वर्णन हुआ था उसमें, जो अंत में 13वें अध्याय में वर्णन हुआ सिद्ध पुरुष सन्यासी का विशेषकर, तो सन्यासियों के लिए तो ठीक है कि वो स्तर प्राप्त करना परमहंस, लेकिन हम घर गृहस्थी में रहने वाले लोग उस सन्यास जैसे पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या उच्च उस उच्च परम पद को, भगवान के चरण कमल को में हम अपना मति को कैसे आरूढ़ कर सकते हैं, कृपा करके ये बताइए हमारे जैसे ग्रस्तों के लिए। कहीं कहीं ऐसे उपदेश दिए जाते हैं जिसका आचरण करना ग्रस्तों के लिए कठिन होता है, जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान ध्यान योग का वर्णन करते हैं, तो ध्यान योग अष्टांग योग, एक स्थान में जाना, एकांत स्थान में जाना, ना ऊंचा स्थान हो ना नीचा स्थान हो, इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, फिर अभ्यास करना, प्राणायाम करना, एक चित करना, हृदय में मेरा ध्यान करना, इस प्रकार भगवान वो। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं ग्रस्त हूँ। तो ग्रस्तों के लिए कुछ होता है वो बताइए, तो वहाँ भगवान भक्ति के लिए बताते हैं और भक्ति के नियमों को पालन करने के लिए अभ्यास करना उसका ज्ञान दिया, वो ठीक है, वो ठीक है। तो ग्रस्तों के इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी पूछ रहे हैं कि ठीक है, वो तो सिद्ध पुरुष थे, अवधूत आत्मा थे, उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन हम परिवार के साथ ग्रह गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति भी ऐसे उच्च पद को प्राप्त करें, उसके लिए कुछ कही। तब उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने सर्वप्रथम दो बातें बताई, पहली क्या, ग्रह एष अस्थितो राजन, हे महाराज घर गृहस्थी में ही स्थित रहते हुए, ऐसा नहीं बताया कि ऐसा परम पद प्राप्त करना है तो छोड़ो घर गृहस्थी को, धंधा बंद कर दो, सब परिवार को छोड़कर भाग जाओ वहां पर, ऐसा नहीं बताया। घर गृहस्थी में रहते हुए राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए यथोचित क्रिया करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, या यथोचित का क्या अर्थ है, यथोचित का अर्थ लिखते हैं प्रभुपाद जी के शास्त्रों में जो लिखा गया है, शास्त्रों में कुछ कर्म करने के लिए बताया, तो शास्त्रों के अनुसार, और यथोचित का दूसरा अर्थ है कि प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक कोई वैष्णव के निर्देशानुसार। शास्त्रों की बातें भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते कि क्या इसका अर्थ होगा, हम कैसे करेंगे, इसलिए शास्त्रों के नियम को जो एक प्रमाणिक गुरु बताता है उस गुरु के, उसके अनुसार यथोचिता घर गृहस्थी में रहते हुए कार्य करना चाहिए, यथोचिता। पहला उपदेश कि हमको शास्त्र के अनुसार एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में या किसी शुद्ध भक्त के निर्देशन में उस शास्त्रों के उपदेशों को पालन करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन व्यापन करना चाहिए, पहला उपदेश दिया। और दूसरा कहते हैं उसमें क्या क्या उपदेश है शास्त्रों में या क्या करना चाहिए, तो पहला ही बताया वासुदेव अर्पणम साक्षात। और जो भी घर गृहस्थी में रहते हुए हम क्रिया करें, व्यवसाय करें, जो कुछ भी कमाएं, जो कुछ भी हमारे पास अर्जित होता है, उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। और वासुदेव साक्षात अर्पित, तो ये सब हम कैसे सीखेंगे? तो कहते हैं उपासित महामुनि, ये सब ज्ञान लेने के लिए महामुनियों का अर्थात वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का, जो भगवान के कथा कीर्तन में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों का हमेशा संग कर। उपासित, उप का अर्थ होता है निकट, और आसित का मतलब बैठना, निकट बैठना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, घर में भगवान वासुदेव को अर्पण भी करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि फिर संडे को मंदिर भी ना आए, कहीं सत्संग में भी ना जाए, हम तो घर में ही सेवा पूजा करते हैं। बहुत भक्त ऐसी बात करते हैं, हमारे घर में हैं ठाकुर जी, बस हम उनका सेवा पूजा करते हैं, बस हमारे लिए ठीक। नहीं, वासुदेव अर्पण वो तो करना ही है घर में, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के भक्तों का संग बहुत जरूरी है। सत्संग में आना चाहिए, जो नाम हट सत्संग होते हैं उनमें भी जाना चाहिए, और साथ साथ में जब भी हमको समय मिलता है मंदिर में आना, भगवान के भक्तों का संग करना। यथोचित का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जब हमको तो गृहस्थी कह सकते हैं, नहीं नहीं हम तो फंसे हुए हैं, हमारा तो जाल है, जाल में से कैसे निकलें। महाराज लिखते हैं राधा गोविंद महाराज के, जाल में से नहीं निकल सकते तो उस जाल को भी साथ में लेकर आओ। जाल में साथ लेके आओ, मतलब जाल किसको मानते, पत्नी बच्चे, ये सब जाल है, ऐसा हम उसमें फंसे हुए हैं, तो उनको भी साथ लेकर आओ, जाल के साथ आओ, जाल से नहीं निकल सकते तो जाल के साथ आ जाओ। ये आचार्य लोग, ये है आचार्यों से शिक्षा लेने का लाभ। अरे हमारा पत्नी है, बच्चे हैं, उनको छोड़कर ना उनको भी साथ मिले, तो जाल के साथ में आओ। तो यथा जो भी समय मिलता है, दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको समय मिलेगा तो आएंगे, विशेषकर ग्रस्त लोग सीधा, हाँ प्रभु समय नहीं मिलता, देखते हैं समय मिलेगा तो आऊंगा सत्संग में या मंदिर में। ये एक प्रकार के व्यक्ति हैं, ये भी ग्रस्त है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है तो कहता है समय निकाल कर आऊंगा। वास्तव में अगर हम आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं, उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं घर गृहस्थी में रहते, तो ये विचार होना चाहिए समय, ये संसार के जो काम व्यवसाय या परिवार वाले ये समय देंगे नहीं, आपको नहीं बोलेंगे चलो आप जाइए। आदमी को इस माया आपको छूट नहीं देगी, हमको समय निकाल कर आना चाहिए। कभी कभी बहुत बेढंग, नहीं नहीं हमारा परिवार है, हमारा व्यवसाय है, हम उसको छोड़कर कैसे आ सकते हैं, प्रभु जी जब करेंगे या कथा में जाएंगे तो फिर धंधा कौन करेगा, और ऐसा प्रश्न। अब देखिए जैसे बंबई में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको बोलिए मंदिर हर रविवार आओ या सत्संग जो होते हैं उसमें आइए, तो उनका सीधा यही, हमारा व्यवसाय है, परिवार है, हम कैसे छोड़कर आए। वही व्यक्ति साले का शादी होता है तो 15 दिन व्यवसाय और छोड़कर चला जाता है, एडजस्ट करता है, प्रभु जी बता रहे नया पिक्चर में 3 घंटा चला जाएगा, टीवी देखने में समय एडजस्ट करते हैं, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें। रूपा जी एक जगह पे बताते हैं कि जो विदेशी लोग हैं वे इंद्रिय भोगों में पड़े हुए हैं, होटलों में जाना, इधर डांस क्लबों में जाना, ये विदेशियों का ज़्यादा होता है, और भारतीय लोग हैं ये समाज के जो कार्यकलाप है, वहाँ आज आमंत्रण है, आज उसका शादी है, आज वो मर गया वो उधर, तो ये लोग उसमें समय निकालते हैं और ये भारतीय लोग इसमें समय निकालते हैं। तो क्या आप कोई आपका रिश्तेदार मर गया या उसके घर में शादी है या उसका व्यवस्था है तो व्यवसाय और परिवार छोड़कर नहीं जाते हैं? जाते हैं, तुरंत जाते हैं, और बहुत लंबा समय निकाल लेते। तो घर गृहस्थी का अर्थ, आदर्श घर गृहस्थी वो है, एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे प्रभु जी, कि तीनों वस्तुओं को एडजस्ट करना, अपना व्यवसाय भी संभालना, अपना परिवार भी संभालना, और साथ साथ में अपना आध्यात्मिक जीवन को भी संभालना, ये सफल ग्रस्त जीवन है। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर को पूछा तो बोला मैंने यहां से, तो डॉक्टर को कहा कि आप अस्पताल में हैं और आपके घर से फोन आ जाए कि आपके घर एक आपके बिल्कुल ससुर जी आए हैं, जल्दी आए, उनका फिर एक दो घंटे के बाद ट्रेन है, तो आप अस्पताल का काम छोड़कर भागेंगे कि नहीं, घर पे जाएंगे ना? नहीं, ससुर जी आए तो आने दो, मेरे को तो इधर का नहीं, तुरंत भागेगा वो। आप घर पे गए, घर पे बैठे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, तुरंत हॉस्पिटल से फोन आता है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, प्रभु जल्दी आए, तो आप खाना भी छोड़कर भागेंगे कि नहीं, जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा व्यवसाय या फैमिली मेंटेन करने के, कभी कभी परिवार मेंटेन करने के लिए हम व्यवसाय को छोड़कर जाते हैं, या कभी कभी व्यवसाय मेंटेन करने के लिए परिवार को छोड़कर जाते हैं, इसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन करने के लिए इन दोनों को भी छोड़कर जाना चाहिए, यथोचित। तो समय निकाल कर आए, तो व्यक्ति को ये महत्वपूर्ण कि महामुनि उपासित, भक्तों का संग करना, सत्संग में जाना, पहला उपदेश दिया। फिर सत्संग में जाकर क्या करना चाहिए? तो कहते श्रवणंतो भगवतो अभीक्षणम अवतार कथा अमृतम। भगवान सत्संग में जाकर, सीधा बात है, सत्संग का अर्थ यहां पर बता रहे हैं, भक्तों के संग करने का क्या उद्देश्य? तो कहते हैं वहां जाकर भगवान के कथा, अवतार की कथाएं हैं, भगवान ने अवतार लेकर कृपा करने के लिए, ये कृपा लीला भगवान की, अवतार, भगवान संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं और अवतार लेकर लीला करते हैं। उन लीलाओं को हमारे ग्रंथों में लिया गया है, तो ऐसे ग्रंथ जहां भगवान की लीला कथाएं हैं अवतारों की, ऐसे ग्रंथ को प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे में श्रीमद् भागवतम प्रमुख है, रामायण है, गीता भी है, ये सब अवतार लीला कथाएं, भगवान ने अवतार लेकर गीता का उपदेश दिया, अवतार लेकर क्या क्या, ये हमारे भागवतम रामायण में ये कथाएं लिखी, तो इनका श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा के साथ यथा काल उपासंत जनावृतम। तो बोले हमको समय यथा काल, ये जो भी समय मिले, विशेषकर प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि आदमी दिन भर व्यवसाय में व्यस्त रहता है, तो कम से कम व्यवसाय बंद करके संध्या काल में जब घर आ जाता है तब व्यक्ति को सत्संग करना। ये देखिए हमारे जितने भी सत्संग चलते हैं ये शाम के समय के हैं, प्राय 9 से 10, 8 से 10, 7 से 10, ऐसे घर घर में सत्संग होते हैं। तो दिन भर आप व्यवसाय में व्यस्त हैं लेकिन शाम के समय जाकर सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि हम देखे थे आज से 50 वर्ष पहले कि संध्या काल में ग्रस्त लोग जब निवृत्त हो जाते थे अपने काम धंधा से, तो शाम के समय में घर घर में भागवतम या गीता या रामायण का पाठ होता था और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर सुनते थे। हमने भी देखा है हमारे गाँव में भी, विशेषकर हमने ये दृश्य देखा था अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास जो होता है, तो उस समय ये कथा होती थी शाम के समय, बहुत गांव के लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ के जो ब्राह्मण होते थे वे पढ़ते थे महाभारत या भागवत या, तो ये पद्धति या रामायण ये पद्धति था। आज ये टीवी के हिसाब, आज आजकल हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं उसी समय को देखा, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, और सब लोग जानते हैं कि ये, सभी देखने वाले कहते हैं कि ये टीवी ने हमारी संस्कृति नष्ट कर दी, हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, लेकिन चालू करके वे भी खुद बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के भक्तों का संग नहीं है, भगवान के भक्तों के संग में नहीं जाते, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के लिए उसको उससे ऊंची वस्तु का स्वादन होना चाहिए, है ना। आप एक पत्थर उठाकर जा रहे हैं, अच्छा पत्थर है, घर पे काम आएगा, लेकिन रास्ते में एक सोने का हार पड़ा हुआ देख लिया, तो वो हाथ में से पत्थर कब गिर गया पता नहीं चलेगा, वो उसको हार को उठा लेंगे। इसलिए ऐसे टीवी बात करने से नहीं छूटता, जानते हैं फिर भी नहीं छूटता है। लेकिन अगर वे भगवान के भक्तों का संग करें और भगवान की कथा में सुने तो इससे वो चीज छूट सकती है। और इस प्रकार भगवान की कथा सुनने से सत्संग छन के संग आत्मा जाया आत्मा जा आदि से, इस प्रकार जो हमारे भगवान की कथा सुनते सुनते उसमें रुचि बढ़ जाती है, उसमें आसक्ति हो जाती है, भगवान की कथाओं में अनुराग हो जाता है, तो इससे क्या लाभ होता है कि धीरे 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 संग उस सत्संग से आत्मा, कभी कभी शरीर को भी आत्मा कहा जाता है, शरीर से आसक्ति छूट जाता है। पहले ही बताया संगम आत्मा, फिर शरीर से जब आसक्ति छूट जाता है तो जाया पत्नी जो शरीर का संबंधी है उसमें भी आसक्ति छूट जाता है, फिर आत्मज पुत्रों में, और आदिशु का अर्थ है और भी शरीर के जो संबंधी हैं, यहां ये नहीं कहा कि संबंधी छूट जाते, उसमें आसक्ति छूट जाता है। क्यों? आसक्ति जो है वो आसक्ति जा नहीं सकती, इसका नाम ही आसक्ति है। कभी कभी कहते हैं आसक्ति छोड़ दो छोड़ दो, नहीं आसक्ति छोड़ना है, बात समझ। जो आसक्ति जा नहीं सकती, एक भक्त बता रहे थे कि समुद्र जो है उसको आप कितना भी मंथन कर लो, मथो समुद्र को, कितना भी उपाय करो, किसी आदमी को कह दो कि 5 लाख रुपया दूंगा तू समुद्र मंथ के अंदर के शक्कर निकाल के दिखा, 5 लाख नहीं 5 करोड़ भी देंगे तो वो समुद्र मंथ कर अंदर से शक्कर नहीं निकल, वहां से नमक ही निकलेगा। कहने का अर्थ है हमारे अंदर से आसक्ति जा नहीं सकती, लेकिन वो आसक्ति जब भगवान की कथाओं में डिवाइड हो जाती है, वही आसक्ति जब भगवान के कथा कीर्तन में और कथा अमृत में लगने लगती है, तब वो आसक्ति वहां से छूटकर यहां आ जाती है, वो स्वतः छूट जाती है। तो कहते हैं और कैसे इसको छोड़ना चाहिए, कैसे छूट जाती है, क्या तो उदाहरण देते हैं नारद, स्वयं स्वप्न उत्थित, स्वप्नम उत्थित, रात को हम सपना देखते हैं, तो स्वप्न में देखते हैं ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, मैं ऐसा हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये मेरे संबंधी, ऐसा देखते हैं स्वप्न। लेकिन जैसे सपना से उठते हैं, उत्थित सपना पूरा हो जाते, जग जाते हैं, तो क्या जो स्वप्न में पत्नी देखा था उसके पीछे जाते हैं कि वो कहाँ गई पत्नी, या वो जो पुत्र देखा था वो मेरा फैक्ट्री को, नहीं होता है। स्वप्न में तो वो देखता है कि मैं रिलायंस कंपनी का मालिक हो गया हूँ ऐसा, लेकिन छूटते के बाद फिर आप देखते हैं नहीं नहीं वो मेरा कंपनी नहीं होता, उसमें आसक्ति नहीं रहे, धीरे धीरे वो सपना ये फिजूल है सब, इस प्रकार छूट जाता है। जैसे सपना में देखी हुई वस्तुएं जगने के बाद उसमें से आसक्ति चला जाता है या हम छोड़ देते, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी ये जब भगवान की कथा अमृत और भक्तों का संग मिलता है तो हम जग जाते हैं, जीव जागो जीव, तो जग जाते हैं, तो जो सपना रूप देख रहे थे वो आसक्ति छूट जाती है। एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध कथा है इस विषय में जनक महाराज की। जनक महाराज को एक दिन रात्रि में अपने महल में पलंग में सोए हुए थे, सुंदर महल, सोने का पलंग, राजा थे, तो उनको रात्रि में सोए सोए एक सपना आया, सपना आया कि उनके राजधानी में किसी ने आक्रमण कर दिया, तो वे लड़ने के उसके साथ लड़ रहे हैं, लड़ते 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 सारी सेना मारी गई, उनका रथ भी भर लिया गया, और अंततः वे भागते भागते अपने को बचाने के लिए एक रेगिस्तान जैसे जंगल में चले गए। तो वहां देखते कई दिन बीत गए, उनको प्यास लग रहा है, भूख लगा है जोर से, लेकिन कोई नहीं है, और भूख और प्यास से कर्रा रहे थे, उसी समय किसी ने एक सूखी रोटी लाकर दे दिया, तो सूखी रोटी थी, तो वो एक कटोरी में पानी दिया और सूखी सूखी रोटी उनसे खाई नहीं जा रही थी, ऐसी थी कड़क। तो उन्होंने वो एक पानी का कोई टोकरी था, तो उसमें वो उस रोटी को भिगोया नरम करने के लिए। जैसे उसमें भिगोने के लिए ऐसा रेती के ढेर पे रखा था, तो कोई कौवा या कोई पंछी आया तो उसको ऐसा गिरा दिया, तो वो पूरा रोटी और पानी और सब धूल में मिल गया। और इतना मिला था उसके लिए भी, वो एकदम जग गए, ऐसा झटका लगा और जग कर देखा, पसीना पसीना हो गया। क्या मैं सपना देख रहा, मैं पलंग पर महल में सोया हूँ और उस समय मैं इतना उसे पसीना छूटा और ये देखा, तो क्या स्थिति था वो। उनके मन में संशय होने लगा कि जब मैं वो देख रहा था तो मैं ही था और वो दृश्य मैं ही देख रहा था, मेरे साथ घटना घट रही थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं तो पलंग पे सोया हुआ हूं। तो उनके मन में एक जिज्ञासा उठा, ये क्या है, हकीकत क्या था उस समय में, ये राजमहल में पलंग में सोया हुआ राजा था या उस समय एक रेती की भिखारी जैसा था, तो मैं क्या था उस समय। तुरंत जिज्ञासा लेकर वे अपने गुरु के पास गए, गुरु से ये जिज्ञासा किया कि गुरुवर, जब मैंने सपना देखा उस समय मैं क्या राजा था कि उस समय वही भिखमंगा जैसा था, उस समय क्या स्थिति थी। था तो मैं ही, मैं अनुभव भी किया, मैं देखा भी, दुखी भी हुआ, भूख भी लगा, तो उस समय मैं ही था, तो ये राजा के वेश में इधर सोया था वो क्या था और वो क्या था, ये स्पष्टीकरण कीजिए इसका। तो उनके गुरु ने बताया कि राजन वो सपना था आधा घंटा या एक घंटा का, वो भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं। उस समय तुम रोटी भीन और भूख लगे हुए तड़प रहे थे तो वो भी सत्य नहीं है, और इस समय तुम अपने को राजा मान रहे हो महल में सो रहे हो तो ये भी सत्य नहीं है। वो एक घंटे का सपना था, ये हो सकता है 10 या 20 या 50 100 साल का सपना है, लेकिन ये भी सपना है, वो भी सपना। तो इस प्रकार सपनावत, जैसे सपनों की बात तो भूले, इसको भी सपनावत भूल जाना चाहिए, धीरे धीरे आसक्ति घटाना चाहिए। इस प्रकार ये कैसे संभव होगा, भगवान के भक्तों के संग में भगवान की कथा कीर्तन सुनने से ये संभव होगा। तो आसक्ति छूट जाएगी, कैसे छूटेगी, घर परिवार वाले हैं, बहुत डिमांड करते हैं, बहुत समय देखा जाता है कि उनका ऐसा डिमांड होता है कि हमारा आसक्ति वहां से छूट जाता है। क्या इसमें दृढ़ होने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान से आसक्ति हो रहा है, कथा में आसक्ति हो रहा है, कीर्तन में आसक्ति हो रहा है, भगवान के भक्तों में आसक्ति हो, इसको दृढ़ करने के लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो कैसे सावधान रहना चाहिए, तो इस श्लोक में बताते हैं। ज्ञात पितरो पुत्र भातरम सुहियदम परे यद वदंती यद इच्छन्ति चा अनुमोदेत निर्मम। गए रविवार को कमल लोचन प्रभु इस पर बहुत भार दिए थे कि अगर उनका कोई डिमांड है या ऐसी उनकी कोई बात है जो पूरा करने में हमारे लिए उस आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, और ऐसी डिमांड होती है परिवार वालों की, तो ऐसी बातें हो तो उसके लिए हाँ हाँ करते रहना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है करेंगे, ये कर देंगे ठीक। लेकिन मन में हमेशा दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि ये बात मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधक तो नहीं है ना, उस पर विचार करके उसके अनुसार हमको प्रतीक रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और हम लग गए, उन्होंने कह दिया कि देखो बाजू वाले ने तो इतना बड़ा फ्लैट खरीदा है, फर्नीचर भी 30 लाख का कराया और आप अभी तक झोपड़ी में बैठे हैं, क्या है कुछ ज्यादा परिश्रम करो ऐसे, तो हाँ हाँ करना, हाँ थोड़ा आने दो धन, अभी थोड़ा व्यवसाय ठीक हो जाएगा फिर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वहां जाकर और 2-4 व्यवसाय फैक्ट्री खोल दे और उधर सत्संग छूट जाए, नहीं उनको हाँ हाँ करते रहना चाहिए, हाँ करा देंगे, हाँ अपना भी फर्नीचर हो जाएगा, अपने भी गाड़ियां, हाँ आ जाएगा, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा बिजनेस तो सेट हो जाने दो, ऐसा हाँ हाँ करता रहना चाहिए, उनको भी निराश नहीं करना चाहिए, आशा बन जाए, लेकिन अंदर से दृढ़ संकल्प रहना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में कैसे उन्नति कर सकता हूं, इसके लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। क्यों क्यों ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्यों ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, क्यों उनकी बात नहीं माना, इसके लिए एक बहुत सुंदर बता रहे हैं कि यावेद भीयमतम जठरम, जितना से हमारा पेट भर जाए, घर गृहस्थी चल जाए, हमारा पेट और परिवार का पालन पोषण हो जाए, तावत स्वतम ही देहिना, और जितना परिवार वालों का जिसे इतना उसको संग्रह करना चाहिए और कमाना चाहिए, इतना ही। अधिकम यो अभिमन्यत सस्तेनो दंड महर्ति, प्रकृति ये सब वस्तुएं यहां पर भगवान की हैं और भगवान की वस्तुओं में से उतना ही हमको ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, जितने से हमारा पेट भरे और हमारा कुटुंब का पालन हो जाए। नहीं नहीं तो हम तो देखते हैं प्रभु जी उसने तो बहुत इकट्ठा किया है, हमारे बाजू वाले ने बहुत किया है, हमारे एक संबंधी हैं उसका भी बहुत किया है, और हमको क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इतना ही लेना चाहिए हैं? तो कहते हैं अधिक यो अभिमन्यत, अगर अधिक उससे लेकर इकट्ठा करके जो व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेता है तो वो वास्तव में चोर है और वो प्रकृति के द्वारा दंडित किया जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए, मैं पढ़ा हूं कि ये भागवत में ही, हमारे शास्त्रों में नहीं, अन्य अन्य भी जो पंथ हैं जैसे इस्लाम है या जैन धर्म है तो उनमें भी ये बात लिखी गई है, उनके शास्त्रों में ये बात सब शास्त्रों में लिखी गई है, सब धर्मों में कही गई है कि जरूरत से ज्यादा जो इकट्ठा करता है वो वास्तव में चोर है और वो दंड का भागी होगा। पुराण में भी ये बात लिखा गया है और अन्य पंथ वालों के अंदर भी ये बात लिखा गया है कि जरूरत से ज्यादा आदमी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो करता है तो वो चोर है और उसको दंड मिलेगा, तो वो करता है तो हम भी करें तो आप भी दंड के भागी होंगे, आपको भी दंड मिलेगा। इस प्रकार जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने में आदमी को उग्र कर्म करना पड़ता है। आधुनिक विकास करके करके अरे वो लोग कहां डेवलप कर दिए, कितने आगे चले गए, हम पीछे रह गए, वो आगे जा जाकर कहां तक जाएंगे, नरक तक, इससे आगे नहीं जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक डेवलपमेंट मतलब ये आधुनिक डेवलपमेंट के नाम पर नरक मिलेगा, आध्यात्मिक डेवलपमेंट के नाम पर आपको वैकुंठ मिलेगा, ये दो रास्ते हैं। इसलिए अगर आपको दंडित होना है, नरक में जाना है या भगवत धाम जाना है, रूपा जी लिखते हैं इस प्रकार ज्यादा श्रम करके जन्म मृत्यु के चक्कर में ज्यादा फंस नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको शास्त्र कहते हैं। और फिर बहुत सुंदर गृहस्थियों के लिए वो उपदेश दिया जा रहा है, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, बहुत बार जाने अनजाने में कई पाप करते हैं, ये तो ऐसा है, तो इसके विषय में भी कहते हैं कि मृगो उष्ट खरम खर मर्क मर्क सरीसृप खगम अक्षिका, ये यहां पशुओं के नाम दिए गए, अन्य जीवों के नाम दिए गए, मृगो मृग उष्ट ऊंट खर मृग या और भी खर पशु को कहते हैं, और मर्क मर्क कहते हैं बंदर, मरकट वैराग्य कहते हैं बंदर, और सरीसर्प सांप खगम और पक्षी, इनको कैसा, इनको भी आत्मना पुत्रवत, उनको भी अपने जैसा है या अपने पुत्र के जैसा उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। रूपा जी बहुत सुंदर, पश्यते शाम अंतरम क्रियत, उनमें और हमारे पुत्रों में ज्यादा अंतर नहीं देखना चाहिए, अंतर कितना है, शरीर का अंतर है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग मांस खाने के लिए इन जीवों की हत्या करते हैं, तो एक पादरी के साथ प्रभुपाद महाराज का संवाद है। कहते हैं कि नहीं नहीं, इनों में जीव नहीं है, इनकी हत्या करना कोई पाप नहीं है। वो पादरी कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, इनमें जीव है और उनका हत्या करना पाप है। तो वो पूछता है, तो आप गोभी आलू टमाटर ये सब खाते हो तो इनमें भी जीव है, तो इनका भी पाप लगेगा आप? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका वर्गीकरण किया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए, इसका वर्गीकरण है। प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं, तो आप अपने पुत्र को मारकर क्यों नहीं खा जाते, अगर सबको मारना बराबर है तो आदमी आदमी को मारकर क्यों नहीं खा जाता, वो पशु को क्यों मारता है? तो वो समझता है कि नहीं इसको मार के खाना है, इसको नहीं। ये बात हुआ ना, तो वर्गीकरण है ना। इसी प्रकार वो भी आलू टमाटर है तो इसको आप खा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आदमी को मारकर नहीं खाते हैं आप पशु को मारकर खाते हैं, ऐसे ही ये उपदेश है कि गोभी आलू टमाटर जो है इनको आप खा सकते हैं, पशु को नहीं खा सकते। इनके साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए, तुम अपने पुत्र को मार के थोड़ा खाते हो। और पुत्रवत व्यवहार का अर्थ है इनके भी पालन पोषण, जैसे पुत्र का हम पालन पोषण करते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं देते हैं, इसी प्रकार गृहस्थियों का कर्तव्य है कि इन जो दूसरे पशु पंछी जीव इत्यादि हैं उनका भी पालन पोषण करने का करना चाहिए। वास्तव में ये उपदेश हमारे हिंदू समाज में है, पहले से ही है। प्रत्येक के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी बोलते हैं तो ये गाय के लिए है, फिर अंतिम रोटी होती है तो बोला ये कुत्ते के लिए है, आदि काल से हमारे घर। लेकिन अब जो लोग इस संस्कृति से हट रहे हैं, विदेशी संस्कृति से, जो पशु हत्या करते हैं मांस खाते हैं, वो क्या गाय के लिए रोटी और कुत्ते के लिए रोटी अलग रखेंगे, पहले से दुख दे रहे हैं। पुत्रवत समझना बहुत सुंदर, भागवतम में इसके लिए पुत्रवत, इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यथोचित उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुत्ता को घर में लाकर बेडरूम में बिठा दें, ये बात नहीं है। समझना चाहिए किसी भी बात को यथोचित समझ। जैसे कुत्ते का स्थान है घर की पीढ़ी, वहां पर कुत्ता बैठा है, उसको रोटी देना है, उसको दुख नहीं देना मार। और दूसरे भी कीट पतंग इत्यादि हैं तो सब हमारे घर गृहस्थी हैं तो उसके कई जानवर होते हैं, चींटियां होती हैं, तो उनको मारना नहीं चाहिए, भगा सकते हो इतना तक ज्यादा में ज्यादा, लेकिन मारना नहीं चाहिए। पुत्रवत व्यापार का मतलब है क्या, हम कभी हमारा पुत्र हमको कष्ट दे दिया, समझो कुछ लोग कहते हैं मच्छर तो काटता है, अरे मच्छर से ज्यादा पुत्र काटता है, मालूम है आपको? कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक हमारे पार्टनर थे तो उनका पुत्र है जो, अब तो बेचारों को भी एक साल से बॉम्बे छोड़कर जाना पड़ा उस पुत्र की वजह से, 30 साल। वो पुत्र 15,000 का मोबाइल दिया, 2-4 दिन में घुमा कर घर आ गया। फिर एक गाड़ी लगा, बोलो गाड़ी चाहिए मेरे को नहीं तो मर जाऊंगा, तो मोटरसाइकिल दे दिया। तो रात को 2 बजे घर आता है, 3 बजे वो मेरे को सब कथा सुना, आप कुछ इनको बदलिए ऐसा कीजिए। उसका घर का परिस्थिति बहुत भिन्न था, इसलिए कुछ वो क्या था, वो खुद शराब पीते थे, इसलिए लड़का भी ऐसा हो गया। अभी वो कुछ नहीं कह सकते लड़के को, लेकिन परेशान बहुत। अरे बोला प्रभु जी मैंने ये 60,000 का गाड़ी लाया, वो तो तोड़ के भांग के किधर फेंक के आ गया, रख के आ गया उधर ही। बोला हमको बोला तुम लेके आ जाओ, वो अभी काम का नहीं। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, मच्छर तो काट के चला जाता है फिर कुछ देर में ठीक, वो तो रात दिन उसी का चिंतन करते, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। गांव लेकर चले गए, बोले यहाँ ये बेकार हो। गांव में जाकर कुछ पैसा रोक कर उसको दुकान कराए, तो वो पैसा भी सारा और उड़ा दिया और दुकान भी ठप कर गया, अभी घर पे बैठे दोनों मार। तो इस प्रकार तो वो इतना परेशान कर रहा है, इतना काट रहा है मच्छर, लेकिन फिर भी वो उसका मार नहीं रहे। पुत्र कभी कभी बोलता है या ऐसा व्यवहार करता है जिसको बहुत पिता को आघात लगता है, लेकिन फिर भी पुत्र को आज तक किसी ने जान से नहीं मारा। और मच्छर काटता है तो बोला जान से मार। यहां कहते पुत्र आत्मा न पुत्रवत, पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। कई ऐसे ऐसे पंथ हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे हैं जो आदमियों के साथ तो दया दिखाते हैं लेकिन पशुओं को मारकर खा जाते हैं, ऐसे ऐसे पंथ हैं। कुछ ऐसे पंथ हैं जो पशुओं पर दया करते हैं और आदमियों पर नहीं करते, ऐसे भी धार्मिक पंथ हैं। और कुछ ऐसे धार्मिक पंथ हैं जो आदमी पर भी दया नहीं करते और जानवर पर भी तो करते ही नहीं, तो वो धर्म नहीं है। धर्म मतलब जिसमें दया हो, धर्म का प्रथम चरण है दया होना चाहिए, दया धर्म का मूल, दया होना चाहिए। ये अलग अलग पंथ की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारे धर्म के अनुयायी कैसे हुए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर उनका नाम भी लो उनका चर। हमारे भागवत में एक कथा था शिबी महाराज, शिबी महाराज बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और इतने धार्मिक व्यक्ति, इतने दयालु थे कि देव समाज में उनका चर्चा होता था। आदमी की बात छोड़िए, वे चींटी को या किसी पशु पंछी को भी कष्ट नहीं देते। तो उनका परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव दोनों ने कहा कि हम उनका परीक्षा लेंगे। तो दोनों एक बाज बना और एक कबूतर बना और वो बाज कबूतर पर झपटता 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 आया महाराज शिबी महाराज के, जहां शिबी महाराज बैठे थे उनके महल में आ गया। कबूतर बहुत परेशान फड़फड़ाता फड़फड़ाता हुआ उनकी गोद में आकर गिर गया और पीछे पीछे वो बाज आया। बाज झपटना चाह कबूतर पर तो महाराज शिबी ने रोक दिया, नहीं रुक जाओ, तुम इसको नहीं मार सकते। बोला ये मेरा आहार है, क्यों नहीं मार सकता। बोला नहीं, मैं तुमको खाने के लिए दूसरी व्यवस्था कर देता हूं लेकिन आप इसको छोड़ दो। बोला मेरा आहार तो मांस है, दूसरा क्या व्यवस्था करेंगे, मैं थोड़ा का रोटी खाता हूं और मेरा प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ ये आहार है, इसमें आप क्यों रोक रहे हैं। आप अगर इसको, मुझे मांस ही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है आप इस कबूतर को छोड़ दीजिए, मैं मांस दे देता हूं। तो मांस किसका दें, ऐसा नहीं कोई दूसरा जीव मारकर मांस दे दो, नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं मांस के, बोला इतना ही मांस लूंगा जितना ये कबूतर का मांस है। तो ठीक है उतना दे दूंगा लेकिन तुम इसको छोड़ दो। तो बोला रखो, तो तराजू में रखा, एक बाजू कबूतर रखा और एक बाजू उन्होंने अपने पांव से मांस काट कर एक तराजू में रखा। लेकिन वो तो देवता थे, जानबूझकर वो तो भारी रहा कबूतर, वो पलड़ा नीचे है, पूरा और मांस निकाल कर दिया और मांस निकाल के इस प्रकार देते देते देखा कि वो तो भारी को स्वयं बैठ गए। बोला मेरे को खा जाओ मार के, लेकिन कबूतर को छोड़ दो। पुत्र ये है हमारा धर्म, सनातन धर्म, दया, कितना दया होना चाहिए। अपने आप हमारा तो एक मच्छर थोड़ा खून पी जाता है, राम मंगला आरती में आए हैं या जप कर रहे हैं, उड़ा दीजिए और कोई कहते हैं मत मार, है क्या काट रहा है। उन्होंने उस कबूतर के लिए अपने शरीर को काट कर दे दिया, कितना कष्ट हुआ होगा। पुत्रवत व्यवहार करना, भागवत को सुनते हैं लेकिन नहीं कष्ट देना। सभी जीवों को लिए भगवान ने एक आहार बनाया है, अगर मच्छर है तो इसको बिचारे का आहार हमारा खून है। ज्यादा से ज्यादा अपनी रक्षा करने के लिए उसको उड़ा दीजिए कोई, लेकिन मारना नहीं चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है दया होना चाहिए सभी के प्रति, ऐसा नहीं कि हमारी पत्नी के प्रति दया है, पुत्र के प्रति दया है, बस हो गया दया, नहीं। उसके प्रति तो आप मजबूर हैं, आसक्ति है, इसलिए दया है। दया सब जीवों के प्रति इस प्रकार रहना चाहिए। और भी भागवत में कई कथाएं आती हैं, रंती देव, रंती देव के 48 दिन का उपवास था। उपवास छोड़ने बैठे तो एक ब्राह्मण आया तो उसमें से ब्राह्मण को दे दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद एक अतिथि आया तो उसको दे दिया उसमें से थोड़ा भाग, थोड़ा ही ले, अभी थोड़ा ही बचा था। उतने में तो एक कुत्ता लेकर आया, एक आदमी ऐसा आया शूद्र जिसके साथ में कुत्ते थे। वो कहने लगा मैं भी भूखा हूं मेरे कुत्ते भी भूखे। तो उन्होंने अपने में से उन कुत्तों को भी खिलाया, उस अतिथि को भी दिया। अब खिलाते खिलाते उनके पास मात्र जल बचा, और जल पीने ही वाले थे तब तक तो एक चंडाल आया। देखिए ब्राह्मण में भी वही दृष्टि रखा, शूद्र में भी वही दृष्टि, कुत्ते में भी वही दृष्टि, और यहां चंडाल आया तो चंडाल कहला मैं तो समाज का निम्न व्यक्ति हूं, मैं बहुत दुखी हूं और प्यासा हूं, मुझको थोड़ा पानी तो पिला, तो जो पानी था वो भी दे। और इस प्रकार इन लोगों को देखकर वे ऐसा नहीं कि ये कहां से आ टपके, देने के बाद भी रंती देव ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु इस संसार में जो भी दुखी जीव हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ये संसार के ताप से तड़प रहे हैं, प्रभु इन सब का उद्धार कर दो। चैतन्य महाप्रभु से वासुदेव दत्त ने ये प्रार्थना किया था। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किया कि संसार में जो भी त्रिताप से पीड़ित हैं, संसार की भूख प्यास से पीड़ित हैं लोग, जीव दुखी हैं, तो इन सब का उद्धार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु और कहते हैं आगे, इन सब का कैसे उद्धार करो, ये सब तो पापी हैं, ऐसे उद्धार होगा? तो वासुदेव दत्त कहते हैं कि इन सब का पाप मुझे दे दो, मैं दुख भोग दूंगा, इनका उद्धार करो। कितना दया होता है, दया का कोई सीमा नहीं, हम थोड़ा दया देकर फूल जाते। इन सब का पाप मुझे दे दो, मैं दुख भोग दूंगा, लेकिन इन सब का उद्धार करो। ये वैष्णवों का आचरण, भक्तों का आचरण, कृष्ण भक्तों का ये आचरण। प्रभुपाद महाराज को कितना कष्ट था, आयु 70 वर्ष की है, धन बिल्कुल नहीं है, कोई और उनको सहयोग देने वाले नहीं हैं, विदेश में गए तो खाने का ठीक से व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, जहाज में जा रहे हैं तो 2 बार हार्ट अटैक आए, लेकिन उन जीवों का उद्धार करने के लिए अपने पर वैष्णव कष्ट झेलते हैं, और अपना अपने को दुखी करके दूसरे को सुखी करना चाहे, वो है वैष्णव, वो है कृष्ण भक्त। ऐसा नहीं कि दूसरों को दुखी करके खुद सुखी होना चाहे, तो माला जपते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये आचरण नहीं, स्वभाव ये नहीं। फिर जब दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार रखना चाहिए तो फिर भक्तों में आपस में और उसका तो क्या बात किया जाए। तो आत्मन पुत्रवत पश्यन्ते, क्या मतलब, इसमें पशुओं में, दूसरे जीवों में और अपने पुत्रों में ज्यादा अंतर नहीं देखना चाहिए। तो इतना ही अंतर देखना चाहिए कि ये पशु हैं तो इनका यथोचित जहां रहे वहां रहे और घर में पालन ना करें ऐसा, लेकिन उनको जहां जो उनका स्थान है वहां जाकर उनको भी पालन पोषण करना, उनके भी हमारी तरफ से उनको कोई कष्ट ना हो, उनको कोई कष्ट है तो दूर करने के लिए इस प्रकार उनको पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद अब मुख्य बात पर आते हैं, मुख्य धुरी पर आते हैं नारद जी। 11वें श्लोक से मुख्य धुरी पर आ रहे हैं कि व्यक्तियों को इस प्रकार दूसरे जीवों का भी सेवा करना चाहिए, और इसके साथ साथ अतिथि का भी सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, साधु संतों का सेवा करना चाहिए, और हमारी पत्नी को भी उनकी सेवा में लगाना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं बेचारे प्रभु जी सेवा करते हैं, लेकिन पत्नी वो बड़े घर से आई है, मैडम है, बहुत पढ़ी लिखी है, तो वो भक्तों के जैसा नहीं करेगी। आप लोग घर में कोई वैष्णव आ गया तो प्रभु जी दंडवत करते हैं, माता जी अंदर ही रहती है, अरे क्या मैंने MA पास किया क्या, ये सभा कोई साधारण स्त्री हो नहीं। जब भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे तो सती जी साथ में थी, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए तो कुंभज ऋषि ने शिव जी को प्रणाम किया। भले कथा सुनने आए लेकिन शिव जी तो महान है, तो जब शिव जी ने प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया, तो शिव जी ने भी उनको प्रणाम किया। तो सती जी सोचने लगी क्या कथा सुनने, हमारे पति बड़े हिंसित थे क्या वो कथा शिव जी ने सुना उसने वो निंद किया क्यों कोई श्रद्धा नहीं था सर ये प्रणाम किए हैं तो वो तो छोटे हैं हमारे पति से कभी स्त्रियों को ऐसा नहीं रखना चाहिए तो स्त्री को भी उनकी सेवा में लगाए अपने पति को पत्नी को भी सेवा में इससे क्या होगा तो कि पत्नी के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगे क्योंकि गृहस्त जीवन की जो मुख्य धुरी है मुख्य जो मैन धुरी पॉइंट है वो वास्तव में स्त्री है इसको पहले श्लोक में बता दिया गया था ये आदमी जो गृहस्थ जीवन में फंसा रहता है मतलब क्या किस में कोई दीवार में थोड़ा फंसा रहता है या वहां कोई ताला का जंजीर थोड़ा लगाया वो पहला जो सबसे ज्यादा आसक्ति वो स्त्री में रहता है तो अब नारद जी मुख्य बात पर आ रहे हैं गृहस्थों की बहुत थोड़ा सुनने में हमको कठिन लगता है और छोड़ने में भी कठिन लगता है बात थोड़ा कठिन है लेकिन इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए इसलिए कहते हैं कि पत्नी में आदमी का ज्यादा आसक्ति रहता है इसके 12वें श्लोक में बताएं जहाद यद अर्थे स्वान प्राणान हन्याद वा पितरम गुरु व्यक्तियों का पति का पत्नी में इतना आसक्ति रहता है कि वो कभी कभी पत्नी के लिए पिता और गुरु की हत्या तक कर देता है ये देखा गया है पत्नी स्त्री के लिए और हत्या ना भी करे तो पत्नी के लिए लोग माता पिता को और उनको दुख देते हैं ये तो देखा जाता है त्याग देते जैसे जब तक आदमी का शादी नहीं होता है तो उनका माता पिता के प्रति बहुत प्रेम लगाव स्नेह रहता है लेकिन आप प्राय देखिए माता पिता से लगाव और स्नेह टूट जाता है उनको दुख देने का कब चालू होता है जब मिसेज आ जाती है ना देखा जाता है समाज में कई माता पिता बेचारे सास ससुर बनने के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं या उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं वृद्धाश्रम में भेज देते हैं आजकल लोग व्यवस्था करते हैं समाज में शिक्षा नहीं देते हैं बड़े बड़े धनी लोग हैं हाँ हम वृद्धाश्रम में पैसा लगा रहे हैं क्यों खोल रहे हैं वृद्धाश्रम जो हमारे जैसे लोग अपने माता पिता को निकालेंगे तो वो वहां रहेंगे मतलब एक तरह से उनको बढ़ावा देते हैं एक दिन वो नहीं जानते कि एक दिन हमको भी आना पड़ेगा एक हमारे मारवाड़ी में ऐसा कथा है कि एक बहू थी तीन पीढ़ी हो गई थी तो जो बहू था पुत्र का पत्नी था और उसका खुद का पुत्र का पत्नी दादी तो जो दादी का बहू था उसके पुत्र का वो दादी को वृद्ध हो गया बेचारा तो उसको जो गांव में कच्चे घर के ऊपर नेवले होते हैं ना मारवाड़ी नलिया उसमें भोजन देती थी वो बहू तो भोजन करने के बाद जो वो पात्र खाली हो जाता था तो उसकी जो पोत्र वधू थी वो उसको ले जाकर घर के पीछे इकट्ठा करती थी तो एक दिन उसकी सास ने पूछा कि बहू तुम इसको क्यों इकट्ठा करती हो तो बोला तुम वृद्ध होगी तब मैं इसमें तुमको दूंगी इसके लिए इकट्ठा कर रही हूं ये जानना चाहिए हम हमारी सासू के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारी बहू भी ऐसा ही व्यवहार करेगी लेकिन जब पत्नी आ जाती है तो माता पिता से के साथ बहुत दूर व्यवहार चाह क्योंकि पत्नी का उनके साथ कोई संबंध होता नहीं है वो क्यों उनकी सेवा करेगी या उनको तो कष्ट इस पर तो पति भी उनके पक्ष में हो जाता है उसके सामने माँ को ताड़ता है ऐसा करता है ये वास्तव में घर गृहस्थी में बहुत बड़ा ये एक समस्या खड़ा हो जाता है उस समय आदमी को बहुत बुद्धि सावधानी से काम लेना चाहिए हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पत्नी को कूट मार कूट के भगा दो ऐसी बात नहीं कहते हैं लेकिन उस समय आदमी को बुद्धि से यथोचित व्यवहार करना चाहिए तो इस प्रकार पत्नी में आसक्ति के कारण कभी कभी व्यक्ति गुरु को गुरु की हत्या कर देता है और कभी कभी अपने माता पिता की भी हत्या कर देता है। इसलिए व्यक्ति को स्त्री में आसक्ति को त्याग देना चाहिए, और जो इस प्रकार स्त्री में आसक्ति त्याग देता है वो भगवान को जीत लेता है। कितना बड़ा बात कहा है। इसके आगे कहते हैं कि स्त्री में आसक्ति का अर्थ क्या है, स्त्री में आसक्ति मतलब क्या, किस में आसक्ति, स्त्री भी जीवात्मा है, जीवात्मा में आसक्ति नहीं है, जीवात्मा तो आसक्ति होगी तो सब में होगी, पशु पंछी ये ते भाई बहन माता सब में आसक्ति, जीवात्मा में आसक्ति नहीं। स्त्री में आसक्ति मतलब उसके शरीर में आसक्ति। इस बात को अभी 13वें श्लोक में बताते हैं कि क्रिमि वीडप भस्म निष्ठांतम कैदम तुच्छम कलेवरम, कलेवरम शरीर को कहते हैं, कि जिस शरीर के प्रति तुम आसक्त हो वो शरीर वास्तव में है क्या, तुम जिसमें इतने आसक्त हो। वास्तव में स्त्री में आसक्ति मतलब उसके शरीर में आसक्ति होता है, और स्त्री का शरीर प्रकृति के द्वारा ऐसा बनाया गया है कि व्यक्ति कहते हैं कि शराब तो पीकर नशा चढ़ता है और स्त्री को तो देखकर नशा चढ़ जाता है, शरीर ऐसा प्रकृति। इसलिए हमारे समाज में पुरुष जैसे वस्त्र स्त्री के लिए नहीं है। हम देखते हैं कि कई भक्त हैं, लेकिन भक्तों के घर में भी माता जी ऐसे वस्त्र धारण करती हैं जो वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न करते हैं क्यों आदमी में और हमारे में क्या अंतर है। प्रभुपाद जी के साथ एक चर्चा है चुनौती बुक में, वो कहता है नहीं हम स्त्रियों को भी पुरुष के समान लाकर रख देंगे, उनको भी जींस पैंट पहनाएंगे, आदमी पहनता है तो हम उनको भी टी शर्ट और जींस पैंट पहनाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे समक्ष लाकर, स्त्री तो गर्भवती बनती है, क्या पुरुष को भी गर्भवती बनाएंगे आप, आ ही नहीं सकता, स्त्री और पुरुष का व्यवहार हो ही नहीं सकता, क्यों आप व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। प्रकृति के द्वारा स्त्री को ऐसा शरीर दिया गया है कि उसके लिए ढीले वस्त्र ही होते हैं, कभी भी स्त्रियों को बहुत टाइट वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए, और माताओं को अपने अपनी बच्चियों को भी ऐसा शिक्षा देना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो अब तो सब लोग पहनते हैं, सब लोग नरक में जा रहे हैं और हम भी क्या उधर ही जा रहे हैं। स्त्री का धर्म है कि वे दूसरे के ब्रह्मचर्य को भंग ना करे, मन से दृष्टि से, अगर कोई भी स्त्री का शरीर ही ऐसा है, स्त्री को ऐसा बताया गया कि काठ का भी स्त्री बना दो तो आदमी का ब्रह्मचर्य भंग हो, एक बार मन विचलित, काठ का मूर्ति मतलब ऐसा लकड़ी का पत्थर का या चित्र भी बना दो तो आदमी का मन विचलित हो जाता है, तब साक्षात स्त्री इस प्रकार भिन्न प्रकार का वस्त्र पहने, स्त्री का शरीर ऐसा है इसलिए उसको जितना हो ढीले वस्त्र और अपने अंगों को ढककर, इसके लिए मुसलमानों में बहुत अच्छा है। आप देखते हैं ना, हम सतीत्व पालन, दूसरा का भी सतीत्व भंग ना हो, और मंदिर में भी आना तो इस प्रकार आना चाहिए कि स्त्री को बहुत ऐसा दिखावा कर लेते हैं, हम दिखाना चाहते हैं शरीर, वास्तव में उद्देश्य होना चाहिए कि सभी का आकर्षण कृष्ण हो, हम ना, हम आकर्षण ना बने। जो भक्त नहीं है वो लोग क्या करते हैं कुछ करते हैं अलग बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सभी जीवों का आकर्षण कृष्ण होना चाहिए, ना कि हम क्यों ऐसा वस्त्र पहने, क्यों ऐसा कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, नहीं, लोग कृष्ण की तरफ आकर्षित होना चाहिए। इस उद्देश्य से भक्तों को अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो मैं बता रहा कि आसक्ति मतलब स्त्री में आसक्ति का अर्थ है उसके शरीर में आसक्ति। हो सकता है ये श्लोक 14वां रह जाएगा, जल्दी में बता देना। तो शरीर क्या है, वो शरीर वो है जो एक दिन कृमि, अगर उसको जमीन में डांटेंगे मरने के बाद तो उसका कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें कीड़े हो जाएंगे, जलाएंगे तो उसका भस्म हो जाएगा, और कुएं में लटकाते हैं तो उसको चिड़िया इत्यादि खाएंगे तो वो मल बन गए बाहर आए, ये ही है शरीर की व्याख्या। उस शरीर में इतना आसक्ति, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने या किसी आचार्य ने लिखा है कि स्त्री का शरीर देखकर इतना इतना ही सोचना चाहिए कि ये हांड मांस का पिंजरा है और कुछ नहीं, ये भाव रखना चाहिए। उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, मैं नहीं कहूंगा वो बात। तो ये शरीर क्या है, शरीर में आसक्ति होता है, ये वास्तव में ये कहां, ये शरीर में आसक्ति और कहां हम आत्मा, हम जीव आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं, आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, और हम ऐसे एक स्त्री में आसक्त हो जाएं। लोग टीवी देखते हैं, क्यों देखते हैं, उसमें स्त्री है। अखबार देखते हैं, क्यों देखते हैं, उसमें भी स्त्री है। तो जो ये समझने में आत्मा हूं कृष्ण का अंश, तो उसको इनको ये टीवी में और ये सब लोग जानते हैं कि लोग किसमें आ सकते हैं, इसलिए कोई टीवी में प्रोग्राम ऐसा नहीं आएगा जिसमें स्त्री नहीं होगा, कोई सिनेमा ऐसा नहीं आएगा जिसमें स्त्री नहीं होगा, कोई विज्ञापन ऐसा नहीं देंगे जिसमें स्त्री, क्योंकि सबका आसक्ति स्त्री के शरीर में है, इसलिए उस शरीर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन भक्तों को सावधान, जिनको आध्यात्मिक उन्नति करना है उनको सावधान रहना चाहिए कि जिस शरीर में ये आसक्ति है वो शरीर वास्तव में एक अगर कीड़े खाए उसको जिंदा डाल दिया जाए तो उसमें से कीड़े उत्पन्न होते हैं, वो है या मल या भस्म। हालांकि हमारा शरीर भी ये दोनों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आदमी स्त्री के शरीर में आ सकते हैं अपने शरीर के कारण, है ना। मुचकुंद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसमें इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपकी माया द्वारा सब ठगे जा रहे हैं। तो फिर उदाहरण देते हैं कैसे ठगे जा रहे हैं, तो कहते हैं कि पुरुष है जो स्त्री में सुख ढूंढता है और स्त्री जो है पुरुष में सुख ढूंढ रही है। अरे प्रभु, अगर पुरुष में सुख होता तो वो स्त्री में क्यों ढूंढता, और स्त्री में सुख होता तो वो पुरुष के शरीर में क्यों ढूंढती, सुख दोनों में नहीं है। तो ये आपकी माया द्वारा ठगे जा रहे हैं, ये ठगनी माया आपकी। तो यहां पर शरीर के, तो वो शरीर क्या है, इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण वैष्णव लोग दिया करते हैं। शरीर, जिस शरीर के रूप सौंदर्य अंगों में हम आसक्त, इसके कारण स्त्री में आसक्त होते हैं, वो शरीर वास्तव में क्या है, ये तो दिया क्रीमी, ये तो हमारा शरीर भी वो है, उनका शरीर की भी वही अवस्था है। एक बार एक वेश्या के पास एक राजकुमार वेश्या के पास आया जाया करता, तो उस वेश्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदरी थी, तो उस राजकुमार ने उसके इतनी सौंदर्य को देखकर आसक्त हो गया, और आसक्त होकर उस वेश्या से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे से सुंदर इस शहर में और कोई नहीं। पहले के समय की वेश्याएं भी कुछ नीतिवान होती थी। कई भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के तात्पर्य में जब भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो लिखा गया कि वेश्याओं ने भगवान का स्वागत किया, ऐसा लिखा। तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि पहले के समय में वेश्याएं भी समाज में थी, लेकिन वे भी वेश्याएं बहुत अच्छी थी, जरूरत थी समाज के लिए इसलिए वो, लेकिन कहने का अर्थ वेश्याएं भी कैसी महान थी। उस वेश्या ने सोचा कि ये राजकुमार है और मैं वेश्या हूं, अगर मेरे साथ ये शादी करेगा तो इसका खानदान, ये सब, इनका कीर्ति, यश नष्ट हो जाएगा, इसका जीवन चौपट हो जाएगा, पूरा परिवार चौपट हो जाएगा। तब उस वेश्या ने सोचा कि इसकी आसक्ति क्या है मेरे शरीर में। तो उस वेश्या ने कहा कि राजकुमार है, मैं तो इसको कैसे मना करूं, लेकिन क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक महीने का समय दीजिए, मैं एक महीने के बाद आपसे हाँ ना कहूंगी। तो ठीक है, वो राजकुमार चला गया। उस वेश्या ने क्या किया, ऐसी औषधि लेना प्रारंभ किया कि उसको प्रतिदिन दिन में उल्टियां ही उल्टियां, उल्टियां ही उल्टियां। और एक महीने तक वो औषधि लिया, कुछ खाया ना पिया ना, और उल्टियां होने से उस वेश्या का शरीर बिल्कुल सूख गया, हड्डी हो गई। उसके जो फूले हुए गाल थे वो गाल पिचक कर खड्डे पड़ गए उस गाल में। आंखें जो कमल लोचन जैसा कहते थे तो वो आंखों में भी खड्डा गिर गया और काली काली हो गई। और इस प्रकार शरीर बिल्कुल हार्ड मांस का पिंजरा बन के वो बिस्तर पर सो गई, पड़ गई। अब उसको उठने का भी शक्ति नहीं, कोई पास में आने को तैयार, वो तो बिल्कुल हार्ड पिंजर हो गया। एक महीने के बाद वो राजकुमार आया और उस बिस्तर में पड़ी हुई स्त्री से पूछता है, यहां एक राजकुमारी था वो कहां गया? बहुत सुंदर था वो, ऐसा सुंदर कोई नहीं, मैं उससे विवाह करना चाहता था। तो वो बड़ी मुश्किल से बोल रही थी कड़ी कि वो जो राजकुमारी जो बहुत सुंदर थी वो उस डब्बे में है जहां वो रोज उल्टी किया करती थी, वो डब्बा भर गया। बोला वो सुंदरता और वो सुंदर वो उस डब्बे कर लो सारे। तुरंत उसको ज्ञान हो गया कि अरे जिस सौंदर्य के पीछे हम आसक्त हैं क्या है उसकी क्या। तो इस प्रकार शरीर में आसक्ति, स्त्री में आसक्ति मतलब शरीर में आसक्ति, तो शरीर की आसक्ति को त्यागना चाहिए। आसक्ति त्यागने का अर्थ है ऐसा नहीं कि अब झगड़ा करना चालू कर दे, कई लोग ऐसा नहीं नहीं रहना है उनके साथ में, परिवार के साथ रहना, ग्रह अवस्थित घर में रहना है और व्यवहार भी अच्छा रखना है, लेकिन आसक्ति को त्यागना है, उस आसक्ति को भगवान में लगाना है। जैसे कहा जाता है कि नाव जो होता है वो जल में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल जब नाव में आता है तो प्रॉब्लम चालू। पत्नी के साथ बच्चों के साथ घर गृहस्थी में रहिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वे सब जब आपके अंदर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, है ना। जल में नाव रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जल नाव में आए तो प्रॉब्लम। तो परिवार के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे अच्छा है कि सबको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, ये सबसे अच्छा। इस प्रकार आसक्ति, अब आज का 14वां श्लोक आ रहा है कि किस ये कैसे संभव है, ये सब जो नारद जी कहते हैं कि नारद जी को ये कैसे संभव होगा, घर गृहस्थी में रहते हुए सत्संग में जाना, भक्तों का संग करना, आसक्ति भगवान में बढ़ाना, ये कैसे संभव, इतना सारा घर गृहस्थी में झंझट है, वो है कमाना पड़ता है, ये सब क्या संभव है, कैसे करेंगे, ये सभी गृहस्थियों का प्रश्न होता है। बात तो सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा करना, लेकिन कैसे ये संभव कैसे है, बिजनेस भी संभालना है, धन भी चाहिए। तो कहते हैं सिद्ध ये यज्ञ, इसमें दो हमारे मूल प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम होता है व्यवसाय, कि हम व्यवसाय में इतना कैसे समय निकालें या क्या करें, धन एकत्रित करना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं हम पीछे रह गए। और दूसरा होता है कि स्त्री में आसक्ति त्यागने के लिए इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, बिना इंद्रिय कंट्रोल के कोई आसक्ति नहीं त्याग सकता। ये दो प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक तो समय कैसे निकालें और भक्तों का संग कैसे करें, कैसे उन, एक प्रॉब्लम क्योंकि हमारे पास व्यवसाय है धंधा में, और दूसरा स्त्री में आसक्ति त्यागना है तो कैसे त्यागे। लेकिन स्त्री में आसक्ति जब तक है जब तक हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, तब इसका उपाय इस श्लोक में कि सिद्ध ये यज्ञ वशिष्ठा अर्थे कल्पयेद व्रति आत्मना। आदमी को सिद्धि से मतलब सहजता से, देव कृपा से, भगवत कृपा से थोड़ा परिश्रम करके जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। पहला प्रॉब्लम का सॉल्व ये बहुत, इस पर एक घंटे का लेक्चर लेकिन समय हो गया, अभी श्लोक अभी आया है कि व्यवसाय से जितना आदमी कितना परिश्रम करना, तो बताया गया कि आदमी को कम से कम 7-8 घंटा परिश्रम करना चाहिए। और उस ये तो कम 8 घंटा करेंगे तो कम ही मिलेगा, तो उसमें से जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान वामन देव बलि महाराज से कहते हैं कि मुझको मात्र 3 डग भूमि की आवश्यकता है बस, और 3 डग भूमि अगर मुझे मिले और इसमें मैं संतुष्ट कर लूं तो संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर मुझको आवश्यकता 3 डग भूमि की है और वो मिलने पर भी अगर मैं संतुष्ट नहीं होता हूं, तो ये सारा पृथ्वी और पृथ्वी में के अंदर डाला हुआ धन और सब एक आदमी को दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हमको जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाए तो, और अगर हम उसमें संतुष्ट हैं, संग्रहखोरी का भाव नहीं है, और जितनी आवश्यकता अनुसार मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तब हम सुखी हो सकते हैं। अन्यथा उसमें संतुष्ट न रह कर नहीं नहीं वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, उसका इतना है, वो ऐसा है, ऐसा अगर करते रहेंगे तो पूरा दुनिया का धन और जो पृथ्वी में भी डाला हुआ है सोना इत्यादि वो निकाल कर और पृथ्वी की स्त्रियां भी दे दी जाए, तो वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में वो संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। ये भगवान वामन देव ने कहा बलि महाराज। एक बार मैं उदाहरण दिया था आदमी की खोपड़ी का, है ना। अलेक्जेंडर आया था भारत में, एक साधु के पास गया, ज्ञान लिया, बहुत लिया, और ज्ञान लेने के बाद बोला कि अब ये गुरु ने ज्ञान दिया है तो कुछ दान देना चाहिए। तो वो तो लूट लूट कर बहुत खजाना इकट्ठा किया था, तो बोला महाराज गुरुवर क्या आपको दक्षिणा दूं। तो बोला हमको क्या चाहिए, आटा चावल दे दो अभी हमको, साधु को क्या चाहिए। अरे बोला मैं अलेक्जेंडर हूँ, आधी दुनिया को सर करने वाला, तुम मेरे पास आटा चावल मांग। जैसा बलि महाराज ने कहा भगवान से, ऐसा वो भी बोलने लगा। तो साधु ने सोचा कि इसको अपने धन का बहुत अहंकार है, तो उसने कहा कि ठीक है, अपने चेले से कहा कि अंदर वो जो अपना पात्र है ना भिक्षा का वो दे दो, और बोलो इनको इसमें सोना चांदी हीरा मोती जो भी डालना है डाल के दे दे, भर के, ये भर के देना, खाली मत देना। तो अलेक्जेंडर ने अपने सेवकों का अपने खजाने में से भर के दे दो, वो खजाने में से डालने लगा, वो भर ही नहीं रहा है। वो नौकर हैरान हो गया कि ये क्या भर नहीं रहा है, मैं पूरा खजाना आधी हो गया और ये भी आधी है और दिखता है इतना। क्यों हंस रहे हो सहदेव दास को? तो वो रहा अलेक्जेंडर के पास आया, बोला महाराज ये तो भर नहीं रहा है। तो अलेक्जेंडर समझ गया कि ये साधु का कुछ चमत्कार है। उसने बोला ये क्या दिया है आपने पात्र, ये पूरा आधा खजाना डाल दिया भर नहीं रहा है। तो उसने ऐसा उल्टा करके दिखाया साधु ने कि ये देखो आदमी का खोपड़ी से बना है, इसमें पूरा दुनिया डाल दे भरेगा नहीं ये कभी। तो इस प्रकार जो थोड़ा समय में 8-7-8 घंटा परिश्रम करके उसमें जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सिद्ध एकार्थ ये सिद्धि से, बहुत कड़ी मेहनत से नहीं। प्रभुपाद जी इस पर कई अपने प्रवचन में बोलते हैं, अरे कड़ा मेहनत करना कड़ा। एक जगह तो कहते हैं अरे आदमी को पशु बना दिया, या आधुनिक उन्नति के नाम पर पशु के स्तर पर लाकर रख दिया आदमी को, इतना परिश्रम आदमी को पेट खाना पालने के लिए, अरे बाप रे। और अगर हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हो हमारे भाग्य में है, सिद्धे कर भाग्य से, देव कृपा से, भगवत कृपा से, कर्मा अनुसार ही व्यक्ति को मिलेगा। कोई 24 घंटा मेहनत करने से या 12 घंटा मेहनत करने से या मंदिर ना जाने से ज्यादा धनी हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या सत्संग में और मंदिर नहीं आते वो सब करोड़पति हैं? हम करोड़पति नहीं है तो क्या वो हैं? अब मैं ये अपना उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, मैं जिस भवन बिल्डिंग में रहता था हमारे सामने एक व्यक्ति रहते थे, हमारे भी डायमंड का काम, उसके भी डायमंड का काम। मैं सुबह 9 बजे जाता था, 7 बजे घर आ जाता था। उसको मैं देखता था, 7 बजे जाता था, मैं जब करता था वो चला जाता था, और रात को 1 बजे घर आता था। आज की तारीख में वो भाड़े पे रह रहा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा फ्लैट है, कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि 12-24 घंटा मेहनत करने से उसको ज्यादा मिल जाएगा, मिलेगा तो उतना ही जितना हमारे भाग्य में है। संसार में धन का कोई कमी नहीं है, समुद्र जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन कोई गिलास लेकर गया तो उसमें उतना जलाएगा, किसी के पास लोटा है तो उसमें उतना जलाएगा, किसी के पास बड़ा कोठी है तो उसमें उतना जलाएगा, कोई मटका है तो उसमें इतना, तो जितना जितना उसके पास पात्र है उतना जल समुद्र का, समुद्र में कोई कमी नहीं जल का। इसी प्रकार हमारे कर्म का कमंडल जितना है उतना उसमें आएगा। इसलिए जो परिश्रम करने से सिद्ध है, जो भगवान की कृपा से थोड़ा परिश्रम करने से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। रूपा जी एक जगह उदाहरण देते हैं, कोई कहता तो क्या कुछ करना नहीं, नहीं करना चाहिए, निष्क्रिय होने की बात नहीं कह रहा जाए कही जा रही है, निश्चिंत होने की बात कह रही जा रही है। रूपा जी कहते हैं आदमी को, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर आया है, तो मनी ऑर्डर आया तो घर से मनी ऑर्डर लेने जाना पड़ेगा और मनी ऑर्डर लेकर आ जाओ घर में, तो मनी ऑर्डर में तो जितना है उतना ही है, अब तुम ज्यादा दौड़ के जाएगा या भाग के जाएगा या बहुत करेगा तो मनी ऑर्डर में ज्यादा होने वाला नहीं है। हाँ, आपको उतना उस जाकर लाना है तो इतना परिश्रम करना है। मनी ऑर्डर ऑलरेडी तैयार है, खोलेंगे उसमें से इतना निकलेगा, तो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जिनको या उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो घर गृहस्थी में रहते उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, यह प्रश्न ध्यान रखना चाहिए। भगवत धाम को प्राप्त करना चाहते, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है, तो उसमें संतुष्ट रहे। और ये तो हो गया, ठीक है, समय निकल, अब इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कहते हैं यज्ञ सृष्टा अर्थे कल्पयेद वर्ति मानान यज्ञोष्टिष्ट, यज्ञ शिष्ट, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं तीसरे अध्याय में, यज्ञ शिष्टांसिना संतो मुच्यते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वदम पापा ये पंचत्या आत्म कारणा। व्यक्ति को इंद्रिय नियंत्रण के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले उसको अपनी जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। और जीवा कैसे कंट्रोल होगा, तो कहते जो कुछ भी हम पकाते हैं घर में है उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में लिखा है, बहुत हम बहुत चर्चा किया सुबह से, कोई इसका ठीक से उत्तर नहीं मिला, कि बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या पांच प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। प्रसाद मतलब भगवान को भोग अर्पित करके, यज्ञ शिष्टन हो। और गीता में भी भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो, संतो मतलब भक्तों के लिए या अपनी चित्त शुद्धि के लिए भगवत प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। इससे क्या होगा, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, भुंजते ते ध्वम पापा, और ये पंचत्य आत्म कारण, जो पकाते हैं किसके लिए, आत्मा मतलब खुद अपने लिए पकाते हैं, भगवान के लिए नहीं, तो वे वास्तव में घोर पाप खाते हैं। उनके लिए कहते हैं, एक तो धम 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 पाप कहते हैं, घोर पाप, तो धम पापा, वो व्यक्ति पापी है और घोर पाप को खाते हैं। गीता पढ़ने वाले भी इस बात को नहीं समझते, क्यों, क्योंकि एक प्रमाणिक परंपरा में नहीं है, प्रमाणिक उनका गुरु नहीं है, इसलिए वो लोग इस बात को कहते ही नहीं। इसलिए शिक्षा प्रमाणिक परंपरा से लेना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से लेना चाहिए। जो हम घर में बनाते हैं एक गुरु के निर्देश अनुसार, भक्त के निर्देश अनुसार, उसको भगवान को भोग लगाना, क्या बनाना, कैसे भोग लगाना, ये सब सीखना चाहिए और भगवान को अर्पित करके उसको खाना चाहिए। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में भी जब इंद्रिय निग्रह की बात करते हैं, सर्व येषां पर क्या वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान विषयेत धीर सर्वापि माम स प्रथित शिष्यात्। तो उसमें पहले दो बात कहा, पहले वाणी को जीवा के कंट्रोल के लिए कहा, जीवा मुख्य है। आप देखिए, एक बोलने में जीवा मुख्य है और खाने में भी जीवा, वाणी और बोलना दो जीवा के काम है। वैसे कंठ, वाणी कंठ से निकलता है लेकिन उसको जीवा ही कहा जाता है, आपकी जबान पर कंट्रोल रखो ऐसा कहा जाता है ना। तो जीवा का दो काम है, एक स्वाद लेना और एक बोलना। तो पहला कंट्रोल जीवा पर होना चाहिए और जीवा के कंट्रोल से सब कुछ कंट्रोल में हो सकता है। इसलिए उपाय में भी दो उपाय इसके यही है, क्या एक तो बोलना है, तो बोलने के लिए पहला उपाय भगवान के नाम का जप कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ये भी यज्ञ हो गया, इससे वाणी कंट्रोल में आएगी। और यज्ञ प्रसाद भगवान को और जो भोग अर्पित करते हैं वो भी यज्ञ है, तो उसका उशिष्ट मतलब प्रसाद खाना, इससे जीवा का स्वाद कंट्रोल में हो जाएगा। तो जीवा, उदरो और लिंग, ये तीनों एक ही लाइन में है, तो इनको एक जीवा पर कंट्रोल करने से ये भी उदर बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद चक्कर पेट भरना चाहते हैं तो उदर पर भी कंट्रोल होना चाहिए, वो प्रसाद के द्वारा, प्रसाद ही उदर में डालना चाहिए। तो इसके द्वारा प्रसाद खाने से हमारी इंद्रियों पर भी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रसाद का प्रार्थना करते तो उसमें कहते हैं, जीवे फैले विषय सागरी तार मध्य जीवा अति, ये सभी इंद्रियों में जीवा अति बहुत अति है, बहुत ज्यादा इसको टेस्ट चाहिए, बहुत ज्यादा बोलती और टेस्ट भी सभी, तो सभी इंद्रियों में जीवा अति। इसलिए जीवा को कंट्रोल करके हम दूसरी इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर, तो इसके लिए प्रसाद। और कल्पयेद वृत्तिम आत्मना, आदमी को विचार करना चाहिए अपनी वृत्ति पर भी, अपनी वृत्ति कमाई पर भी विचार करना चाहिए कि मैं कितना कैसे व्यवसाय करूं, कैसे धन अर्जन करूं कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भी चलता रहे, भक्तों का संग भी हो, सत्संग भी होता रहे, इस प्रकार का मैं किस प्रकार वृत्ति रखूं, मेरी वृत्ति आत्मा। और शेषे स्वतम तज्जन प्राज्ञ, इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामित्व का भाव त्याग देना चाहिए, या इस प्रकार करते हुए उसके स्वामी का भाव जो है, मैं मालिक हूं, पत्नी का मैं पति हूं, घर का मैं मालिक हूं, फैक्ट्री का मैं मालिक हूं, उसका मैं मालिक हूं, ये जो स्वामित्व भाव है, मालिक का भाव है, उसको धीरे धीरे क्षण त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति, प्राज्ञ कहते हैं बुद्धि को, मान जब इस प्रकार अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेगा और पत्नी के प्रति आसक्ति त्याग देगा, दूसरे भी अपने व्यवसाय के साधन है, धन है, घर है, उस पर भी मालिक का जो भाव है उसको त्याग देगा, अर्थात कृष्ण को मालिक समझेगा, इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी बुद्धि से इस प्रकार ऊपर उठेगा तो पदवी महता मियाद, तब वह व्यक्ति महात्माओं की पदवी को प्राप्त कर लेगा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया युधिष्ठिर महाराज का, उस पदवी को, महात्मा की पद को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो कहते हैं इस प्रकार तुम भी उस पद को प्राप्त कर सकते, पदवी महता मिया, उस पदवी को तुम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, गौर निताई की, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की, सब वेद भक्त वृंद की। आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ और सबसे निवेदन है कि कोई भी उठेगा नहीं, प्रभु जी कोई भी उठेगा नहीं, मैंने जानबूझकर 15 मिनट पहले, अभी और आधा लेक्चर बाकी है इस श्लोक का, जानबूझकर मैंने 15 मिनट पहले पूरा कर दिया है, इसलिए आप कोई उठकर मत जाइए। विशेष आज कुछ अनाउंसमेंट है, सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि हर ग्रेस राधिका कृपा देवीदासी, ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की डिसाइपल हैं और देश विदेश में भी बहुत प्रचार करती हैं, और ये पंजाब से हैं, बहुत अच्छी वैष्णव हैं और इनके द्वारा प्रसाद लेने के बाद भक्ति वेदांत हॉल में एक वैष्णव सदाचार के ऊपर या वैष्णव एडवोकेटिज के ऊपर एक प्रवचन है और उनके प्रवचन में मुख्य बात यह है कि सिखों में पंजाबियों में भी जो ग्रंथ हैं या गुरु नानक के जो उपदेश हैं या सिखी जम जो है सिख धर्म के अंदर भी उसमें भी वैष्णव एटोकेटिस बताया गया है, उसमें भी वैष्णवों के धर्म वैष्णव धर्म का निरूपण हुआ है। तो उसके ऊपर ये प्रकाश डालेंगी और आप जानिए इन्होंने इसी पर एक बुक भी लिखा है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रवचन करते हैं। इन्होंने अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में भी इस विषय पर इनका प्रवचन हुआ है और उसके बाद राधा रास बिहारी मंदिर में भी इस विषय पर वो प्रवचन दे चुकी हैं और अब हमारे सौभाग्य से यहाँ भी वे हमें इसका लाभ देना चाहती हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद के बाद भक्ति वेदांत हॉल में वे माता जी के द्वारा इस प्रवचन को श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। ये है सभी के लिए। दूसरा, जो युवा भक्त हैं, युथों के लिए, युवा भक्तों के लिए कमल लोचन प्रभु द्वारा यहाँ पर क्लास होगा, यहीं पर 11 बजे से 12:30 बजे तक। युवा जो भक्त हैं वो प्रसाद लेकर तुरंत यहाँ आ जाएं, यहाँ कमल लोचन प्रभु युवाओं के लिए प्रवचन करेंगे 11 से 12:30 बजे तक। परसों मंगलवार को निर्जला एकादशी है, उसको भीम एकादशी भी कहते हैं। ये सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, इसको निर्जला किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि साल भर जो लोग एकादशी नहीं कर पाते हैं या ठीक से नहीं कर पाते हैं, वे अगर इस एकादशी को निर्जला कर लें तो उनको सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भीम, इसको भीम एकादशी इसलिए कहते हैं कि भीम भूखा नहीं रह सकता था। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैं तो भूखा नहीं रह सकता, मैं क्या करूं। तो कृष्ण ने कहा कम से कम ये एक एकादशी तो करो, तुमको सब एकादशी का फल मिल जाएगा। हमको भीम नहीं बनना है, हमको तो हर एकादशी का पालन करना है। तो ये निर्जला एकादशी है, उस दिन सभी भक्तों से निवेदन है कि मंगला आरती में आइए, इस एकादशी का पालन कीजिए और उसी दिन संध्या समय में गोपीनाथ मंदिर से कुछ भक्त बहुत ही सुंदर वाद्यंत्र लेकर आएंगे और उस पर यहाँ शाम को कीर्तन होगा। गोपीनाथ मंदिर के एक स्पेशल कीर्तन पार्टी है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्यंत्र हैं, वो उन वाद्यंत्रों के साथ यहाँ बहुत सुंदर कीर्तन होगा संध्या काल में। तो आप उसका भी लाभ उस दिन उठा सकते हैं। और आप जानते हैं अब जगन्नाथ जी का उत्सव आ रहा है, रथ यात्रा आ रहा है, जानते हैं, सभी को पता है रथ यात्रा का, रथ यात्रा में क्या करना है वो भी पता है, रथ यात्रा के लिए हमें क्या करना है वो भी पता है। जैसे हमारे घर में शादी आता है तो हम तैयारी करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बजट सबसे पहले वो होता है, बाद में दूसरा काम होता है ना। तो आप सब तैयार है ना, तैयारी। विशेषकर जो दीक्षित भक्त हैं जिन्होंने राधा गिरधारी मंदिर से दीक्षा लिया है और हमारे मंदिर में जगन्नाथ जी विशेष रूप से उपस्थित हैं हमारे पर कृपा करने के लिए, पूरे बॉम्बे में जितने इस्कॉन के मंदिर हैं 4 या 5 जो भी मंदिर हैं उसमें जगन्नाथ जी यहाँ विराजते हैं। क्यों? क्योंकि वे मीरा रोड के भक्तों पर बहुत कृपालु हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठे। तो जगन्नाथ जी का हमारे पर विशेष कृपा है। तो साल भर तो हमें वही दर्शन करते हैं, जो भी करते हैं वो करते हैं, लेकिन रथ यात्रा इनका मैन उत्सव, मुख्य उत्सव है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी रथ यात्रा में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो ये हमारे लिए मुख्य उत्सव मानना चाहिए हमारे मंदिर का। जन्माष्टमी तो सभी मंदिरों में होती है सब, और रथ यात्रा भी होती है, लेकिन वहां रथ यात्रा भी हमारे जगन्नाथ जी ही जाते हैं। तब हमारे यहाँ जो रथ यात्रा में करेंगे जगन्नाथ जी का उत्सव होगा तो उसमें हमको विशेष जगन्नाथ जी का सेवा करना है। उसमें विशेष कोई सेवा आप कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्रतिवर्ष दीक्षित भक्त अपना सेवा प्रदान कर ही रहे हैं, तो जो भी प्रतिवर्ष कई सालों से जब से रथ यात्रा उत्सव है उससे दीक्षित भक्त सेवा करते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं मंदिर की तरफ से कि आप लोग प्रतिवर्ष इस प्रकार जगन्नाथ जी के उत्सव में अपना तन मन धन से सेवा दे रहे हैं और इसी सेवा को हमें आगे भी प्रारंभ रखना है। भक्ति में कोई संडे मंडे नहीं होता है, छुट्टी नहीं होता है, तो इसी सेवा को निरंतर रखना है। अर्थात प्रतिवर्ष जो दीक्षित भक्त अपनी भेंट अर्पित करते हैं जगन्नाथ जी को वो कृपा करके करना है। और यहाँ पर भक्त बैठेंगे, मैं भी हूँ, तत्वेता प्रभु हैं, विष्णु कुमार प्रभु भी हैं, ये सब आपकी सेवा को जगन्नाथ जी को अर्पित करने के लिए सेवारत हैं। तो आप अपना अपना सेवा आज से ही इनको प्रदान करना प्रारंभ कर दें। आज अगर नहीं लाए हैं तो आते रविवार को लेकर आइए। जो दीक्षित भक्त हैं वे प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की सेवा में जो भेंट देते हैं वो भेंट देना है। ये सभी दीक्षित भक्तों से विनती है। और ऐसा नहीं कि दीक्षित भक्त ही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, दीक्षित भक्तों के लिए तो अनिवार्य है वो प्रतिवर्ष करते हैं और करना ही है। लेकिन जो दीक्षा लेने के इच्छुक हैं या दूसरे भी भक्तगण जगन्नाथ जी का सेवा करना चाहें तो वे भी अपनी भेंट दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी उत्सव में पहले लक्ष्मी का होना अति आवश्यक है। तो लक्ष्मी सेवा सबको करना है, अपना भेंट अर्पित करना है और उसके बाद जो सेवा है वो तो हमको करना ही है। तो सबको ये इसके लिए मेरा खास निवेदन है और इसके लिए इस प्रकार मंदिर से आदेश दिया गया है कि जो भी अपने अपने काउंसिल लीडर हैं, मीरा रोड के लीडर हैं और जो भी मल्लाड़ के हैं या दहीसर के हैं या बोरीवली के हैं, जो भी भक्त अपने अपने लीडर हैं उनको अपना सेवा अर्पित कर दें और वे मंदिर में दे देंगे, अथवा यहाँ पर भी कुछ भक्त उपस्थित रहेंगे उनको भी आप अपना सेवा अर्पित कर सकते हैं, भेंट अर्पित कर सकते हैं, इसके लिए मुझे भी दे सकते हैं। तत्वेता प्रभु हैं, विष्णु कुमार प्रभु हैं, इनको आप निसंकोच अपना सेवा दे सकते हैं। तो ये खास करके आपको निवेदन है रथ यात्रा के विषय में। और रथ यात्रा के उत्सव आ रहा है तो पहला जो उत्सव प्रारंभ होता है स्नान यात्रा से, तो 26 तारीख शनिवार को जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है। उसके बाद 15 दिन के लिए भगवान बीमार हो जाएंगे, हमको दर्शन नहीं देंगे, तो 15 दिन तक जगन्नाथ जी के दर्शन से वंचित रहना हमारे लिए बहुत ही कष्ट की बात होगी। तो कम से कम हम उस दिन आकर जगन्नाथ जी का भरपूर दर्शन कर लें, आंखों में बसा लें और फिर उस रूप को रोज हृदय में दर्शन करते रहें। तो उस दिन आप आइए, स्नान यात्रा उत्सव यहाँ होगा, अभिषेक होगा 26 तारीख को शनिवार को। ठीक है, ये दो उत्सवों के बारे में। अभी बाकी कमलोचन प्रभु भी आए हैं तो वे कुछ अनाउंस करेंगे। और अगली जो रविवार की सेवा है नयन, क्या नाम है, नाम भूल, पुण्य नयन प्रभु, इस ग्रेस पुण्य नयन प्रभु के जो भी काउंसलर हैं उनके द्वारा की जाएगी। और क्या, हाँ माता जी के लिए प्रोग्राम है। ये तिरुपति मंदिर इस्कॉन और ये नित्य सेवा का भी, नित्य सेवा जिनका बाकी है।
तो हमारा बड़ा खुश हुई भी और साथ साथ में विधान की बात है,
तो भगवान के नाम में जा रहा ही है तिरुपति जो है वो
पवित्र भी जगत है, तो उसमें जाके वो इस्कॉन मंदिर में सेवा वगैरह उनका निश्चित हुआ है, मंदिर में पूरा फुल टाइम सेवा करने के लिए तैयार है। तो ऐसे हमारा जीवन तो इसी प्रकार बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे से हमारी भौतिक चीजों को त्याग करके कैसे कैसे मानवता की ओर बढ़ना चाहिए हमको, तो हम भी इस प्रकार संकल्प दिए हैं। तो हम सिर्फ में आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत अच्छी संगति प्राप्त हुई हमको, तो सारे वैष्णव से प्रार्थना भी है उनको आशीर्वाद दे ताकि मती है पूरे तरीके से कृष्ण में लगे। तो वो श्री राधा के लिए कभी ना भूले कहीं भी जाएंगे।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
और एक विशेष कार्यक्रम है आज, आप सब जानते हैं वैसे मुंबई में कम दिखाई पड़ते हैं, आप नॉर्थ में जाएंगे दिल्ली उस साइड में तो आपको बहुत सारे सरदार देखेंगे। तो इनको सिख धर्म कहा जाता है तो जो काम करते हैं। तो मैं भी एक बार ऐसे गया था उधर चंडीगढ़ में, हर साल जाता हूँ। पिछली बार चंडीगढ़ में गया था तो मुझे ये सौभाग्य हुआ कि उनका बड़ा सा एक मंदिर मंदिर कहते हैं, वैसे तो प्रसिद्ध है गोल्डन टेम्पल के नाम से अमृतसर में। आप ऐसे कितने लोग हैं उधर? पूजा करते हैं कैसे क्या है गर्दी को, तो जैसे मैंने बहुत सारे पूछते बहुत सारे वॉल्यूम थे, एक किताब ऐसे लिया एक पेज घुमा है और उधर पहली लाइन में एक बात लिखा है, इंग्लिश में पढ़ा उधर लिखा है जो राम का नाम नहीं लेता वो नरक का टिकट देख रखा है। क्या हो गया वैसे तो खुलेआम हमारे घर में काम नहीं होते इतना स्पष्ट तरीके से ऐसा, तो इससे पता लगता है कि जो सिख धर्म है और ये सनातन धर्म है सिर्फ सनातन धर्म का ही है, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण जो दोनों को जानने वाले के पास ही रहता है। तो बड़ा भगवान की सौभाग्य है, भगवान से बड़ा सौभाग्य है कि आगे राधा कृपा देवी दासी वो हमारे मंदिर में उपस्थित है। तो वो उनका जन्म उसी परिवार में हुआ है, बाद में उन्होंने प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ लिए, भक्तों की संगति के द्वारा वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण किया है। तो उनके द्वारा एक सेमिनार होगा 11 बजे, आप सब उनके प्रसाद देंगे, प्रसाद देने के बाद उधर भक्तिवंत हॉल में जाएंगे, सेमिनार हिंदी में होगा। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि खास करके आप तुरंत घर मत जाइएगा, प्रसाद देंगे भक्तिवंत हॉल में जाइए और राधा कृपा माता जी के द्वारा वैष्णविज्म इस प्रकार जो वैष्णव धर्म है वो ग्रंथ साहिब में प्राप्त होता है, इसके बारे में और भी बहुत सारे बातों को आपको सुनने को प्राप्त होगा। वैसे तो उधर जब हम एक बार गए थे तो पिछली बार गए थे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए, और आज शाम की जो आरती होती है उधर वो राधा कृष्ण की आरती होती है। बहुत सारे चीजें आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगे, इसलिए सेमिनार अनिवार्य तरीके से आप निश्चित रूप से अटेंड कीजिएगा। ये प्रत्येक कॉल में 11 बजे होगा, इसलिए आपको जल्दी पता होगा। तो वैसे ही स्पॉकर को कहते हैं कि हर प्रेस राधा कृपा माता जी खड़े हो जाए तो ताकि हम आपसे दो साल मतलब आपको साल कर सकते हैं। थैंक यू
ठीक है। तो आता उसका मतलब सेना यात्रा।
और यूथ प्रोग्राम है वो जो अत्यंत हॉल में जो 10:30 बजे शुरू होने वाला था यूथ प्रोग्राम इधर मंदिर में होगा 10:30 बजे महाप्रसादे गोविंदे
महाप्रसादे गोविंदे
नमोगामणि वैष्णवे
नमोगामणि वैष्णवे
नमोन्यता राजन
राजन
विश्वासो निगजायते
नारिना
विद्या
चालू ही है
जी। मैं एक से बोल दूं किसी का आईपॉड है लेके
मेरे जेब में डाला है उसने।
हां किसी ने आपके जेब में डाला है। हरे कृष्णा
वो डाल के गए हैं रिकॉर्ड करने के लिए चालू है।